मित्रों नमस्कार, और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आप सबके साथ ही स्वागत करता हूं अपने उन तीन प्यारे नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं सौरभ मिश्रा जो दिल्ली से हैं, ललित कुमार आप बिजनौर उत्तर प्रदेश से हैं, और अर्जित तिवारी आप झांसी उत्तर प्रदेश से हैं। तो सौरभ, ललित और अर्जित, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, इस बार जो सिविल सर्विस के जो एग्जाम हुए हैं उस एग्जाम ने सच पूछे तो मुझे कुछ ज्यादा ही उत्साहित कर दिया है, ज्यादा ही आत्मविश्वास से भी भर दिया है। और आत्मविश्वास की तो कोई सीमा होती ही नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि सर तो क्या आप पहले कम आत्मविश्वास के थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक जितने जो आप समझ लीजिए कंपलसरी पेपर के सारे एग्जाम सारे पेपर्स आ चुके हैं और मैंने देखे हैं, वो क्या खूबसूरत पेपर हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मुझे इस बात को देख करके बेहद खुशी हो रही है दोस्तों, कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चंस हैं जिनकी चर्चा इस डेली ऑडियो गाइडेंस में की जा चुकी है, जिन पर स्पेशली मैं आप लोगों को प्रेस क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर चुका हूं, जिन पर मैंने योजना और कुरुक्षेत्र से छांट छांट करके आपको आर्टिकल्स प्रोवाइड किए हैं, और जिन पर मैंने करंट कंटेंट के माध्यम से आपको लिखित सामग्री पहुंचाई है। बहुत कम ऐसे टॉपिक है, रेयरली ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम लोगों ने इस डेली ऑडियो लेक्चर में बात नहीं की है। तो मित्रों, मैंने जो आत्मविश्वास की बात कही वो इसलिए कही क्योंकि इससे आपको लगता है कि नहीं, आपकी दिशा बिल्कुल ठीक है। और मित्रों, दूसरी बात जो मुझे कुछ स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप भी मिले, जैसे हमारे अभी लेटेस्ट बैच की स्टूडेंट, फिफ्थ बैच की स्टूडेंट काजल हैं जो पटना से हैं, वो हर एग्जाम के बारे में मुझे सूचित कर रहे हैं। दिलमिल सिंह हैं जो हमारे थर्ड बैच के स्टूडेंट हैं, जिनका कस्टम एक्साइज रेवेन्यू सर्विस में सिविल सर्विस में सिलेक्शन भी हो गया है। ये वो स्टूडेंट हैं जो हर दिन मुझे व्हाट्सएप के जरिए अपनी स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि उनका पेपर कैसा रहा। उसमें काजल ने लिख करके कल शाम को जो व्हाट्सएप किया है बताया कि कितने सारे क्वेश्चंस उसने सिर्फ इस बेस पर सॉल्व कर लिए क्योंकि उसने क्लासेस अटेंड की थी। कहीं तो सीधे सीधे क्लास से उसको टॉपिक मिल गया, या दूसरे अगर टॉपिक सीधे सीधे नहीं मिला तो उसको वो दृष्टि मिल गई, वो छोर मिल गया, वो आधार मिल गया जिसके जिसको बेस बनाकर वो अपना उत्तर बहुत अच्छे से लिख सकी। तो मित्रों, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है कि इस डेली ऑडियो लेक्चर के माध्यम से आपको सफलता की कुछ सीढ़ियां चढ़ने में मदद मिल जाए। यही मेरे लिए आप सबके द्वारा सामूहिक रूप से दिया गया नोबल प्राइज है। तो मित्रों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के साथ हैं जो अभी मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, और अब मेंस का एग्जाम खत्म ही होने वाले हैं। तो मित्रों, आइए अब हम बात करते हैं न्यूज एनालिसिस पर। कल की AIR न्यूज आप लोगों ने सुनी ही होगी। मित्रों, कल की AIR न्यूज में भी कोई खास वैसी बातें नहीं है, लेकिन कुछ चीजें मैं आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। एक तो मैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता जी जो नहीं रही थी, उन पर न्यूज में काफी बड़ा हिस्सा लिया गया, जो स्वाभाविक भी था। वो इसलिए मित्रों कि वो अभी वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थी। देखिए, दो स्थितियां होती हैं, यदि वो पूर्व मुख्यमंत्री रही होती और अभी नहीं होती तब स्थिति बिल्कुल दूसरी होती, लेकिन चूंकि अभी वो मुख्यमंत्री थी, एक पद पर थी और इतने जिम्मेदार वाले पद पर थी, तो स्वाभाविक है कि पूरी राष्ट्र की श्रद्धांजलि, पूरे राष्ट्र में एक तरीके से शोक की लहर आएगी, आई ही, और ऐसे में न्यूज में कवरेज होना ही था। तो मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप उसे अनावश्यक न माने, उसके पीछे एक रीजन है, उसके पीछे एक लॉजिक है। आप देख रहे हैं कि कल हमारे पार्लियामेंट की बैठक भी स्थगित की गई उनके शोक में, और राज्य में तमिलनाडु में तो 7 दिन का शोक ही घोषित किया गया, कुछ और राज्यों ने भी 1 दिन 3 दिन के इस तरह से शोक घोषित किए हैं, जो मुझे लगता है कि स्वाभाविक ही है। तो मित्रों, जो दो जो खबरें हैं उस पर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। पहली खबर आपने देखा दोस्तों कि जो ब्रिक्स BRIC के जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनके बीच में अभी जो बातचीत हुई तो एक समझौता हुआ है और वो ये कि टैक्स चोरी वगैरह के मामले में सभी देश एक दूसरे से साझा करेंगे, जो सूचनाएं हैं वो साझा करेंगे। मित्रों, ब्रिक्स देशों में कौन कौन पांच देश हैं आप जानते हैं, ब्राजील, इंडिया, चाइना, ये सब देश हैं, तो मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं। देखिए इसकी दिशा, देखिए इसमें इसके सिम्टम्स को पकड़िए, इस सिम्टम्स क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, या ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए किस तरह से ये उपयोगी हो सकती है, क्योंकि अभी इस बार जो क्वेश्चंस पेपर आए हैं मित्रों, आप एक उत्सव मना सकते हैं और इस बात का कि 2013 से अभी नया पैटर्न शुरू हुआ है, 2013 के पेपर सबसे कठिन पेपर थे कंपैरेटिवली, 14 उससे सरल रहे, 15 उससे सरल रहे और सच पूछे तो 16 उससे भी सरल हैं। लेकिन सरल का मतलब ये नहीं है कि कम मेहनत की जरूरत है, ये मत समझिएगा, सरल का मतलब ये है कि कम से कम आपकी पकड़ में चीजें हैं, एक जनरल नॉलेज के तहत जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है वो है। 2013 में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे जो जनरल नॉलेज के अंतर्गत ही आए थे, लेकिन बेसिकली वो कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक नॉलेज की मांग करते थे, तो इस हिसाब से वो सही मायने में जनरल नॉलेज के करीब चीजें आ रही है। तो अब आपको चीजों की बुनावट कैसे की जाती है इस कला को विकसित करना होगा। मुझे मित्रों याद आ रहा है बचपन के दिनों में हम लोग खाट बिना करते थे, पलंग बिना करते थे, है ना, जैसे खाट की रस्सी हो गई, पलंग का जो पलंग के जो भी जिससे पलंग बनाई जाती वो हो गई, और उसको एक ही बंडल होता था उसका, और उसको तरह तरह से करके उसमें अलग अलग डिजाइन वाले पलंग हम लोग तैयार कर लेते थे। बस वही बात है कि जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स आपके पास हैं, बिखरे हुए हैं, बस उनकी बुनावट आपको करनी आनी चाहिए कि उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे मैंने अभी ब्रिक्स देशों के बारे में कहा कि वो टैक्स चोरी के बारे में सूचनाओं का एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगे। अब ये एक धागा है, इसको कहां आप इस्तेमाल करेंगे। बट नेचुरल है मित्रों कि अभी आप देखिए कि काला धन के खिलाफ भारत ने जो कदम उठाया है, पहली बात ये कि आप देखते हैं कि कुछ टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, हवाला के बारे में आप सुनते हैं, बाहर आप पैसा एजेंट्स हैं, बाहर पैसा भेज रहे हैं, काला धन भेज रहे हैं, वहां से फिर भारत में वापस आ रहा है, मॉरिशस से सबसे ज्यादा हमारे पास इसी रूट से पैसा आता है, और मॉरिशस के साथ अब एक संधि भी हो गई है, सरकार ने भी मॉरिशस से जो इस तरह से पैसा आता है उसके बारे में अपने एक्ट को बदला है। 5 महीने पहले हम लोगों ने इसके बारे में बातें की थी, आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो मालूम होना चाहिए, यही डेली ऑडियो लेक्चर की सबसे बड़ी ताकत है कि अगर आप इसे केवल सुनने के लिए सुनेंगे तो शायद उतना फायदा नहीं उठा पाएंगे, लेकिन अगर आप इसे एक सीरियस क्लास के रूप में लेंगे कि नहीं ये कम से कम ये 20 मिनट का जो डेली ऑडियो लेक्चर आता है इसको तो मैं ध्यान से सुनू ही, तब आप इसका सही मायने में फायदा उठा पाएंगे, तब वहां की चीज यहां जोड़ पाएंगे, यहां की चीज वहां ले जा पाएंगे, और यही अब एग्जामिनेशन में सक्सेस होने का सबसे बड़ा मुझे मंत्र भी दिखाई दे रहा है। तो मित्रों, अब केवल भारत ही इस काले धन से परेशान नहीं है, दुनिया के दूसरे देश भी परेशान है, खासकर जो आतंकवाद जो फैल रहा है, जो टेररिज्म पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि कैसे दावानल की तरह, जैसे कोई समुद्र में आग लगती है या जंगल में जो आग लगती है उस तरह से फैलती चली जा रही है, और इसके पीछे नशीले पदार्थों की तस्करी, इसके पीछे हथियारों की तस्करी, काला धन एक बहुत बड़ी ताकत है। तो हर देश अब इस कोशिश में है कि इस पर कैसे नियंत्रण पाया जाए, तो यह केवल भारत का की ही बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है। तो कम से कम 5 देशों ने इस तरह से आपस में यह समझौता किया है और एक बहुत बड़ा कदम है जो आगे चल करके ब्लैक मनी पर एक नियंत्रण लगाने का एक महत्वपूर्ण आधार हो सकता है, तो इस कंटेंट के रूप में आपको इसे लेना है। मित्र, जो दूसरी खबर थी वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट खेहर जी जो है अब वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, उनके बारे में अखबारों में छपा है, आप पढ़ लेंगे, 7 महीने का उनका कार्यकाल होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं वह कि आपने देखा होगा कि हम लोग बातचीत में ना राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात करते हैं, सरकार ने एक अधिनियम पारित किया था संसद से कि जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगी वो एक कॉलेजियम के जरिए होगी, यानी कि एक निर्वाचक मंडल होगा, है ना, उसमें कुछ लोग होंगे जिसमें कि लॉ मिनिस्टर को भी रखा गया था, दो अन्य सदस्यों को भी रखा गया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। न्यायिक पुनरीक्षा के अधिकार का उपयोग करते हुए उन्होंने माना कि न्यायिक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की नियुक्ति का मतलब है न्यायालय की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाना, सरकार इस पर नियंत्रण स्थापित करना चाह रही है। वो जो फैसला दिया गया था, जिस पीठ ने फैसला दिया था, जिस बेंच ने, उसकी अध्यक्षता खेहर जी ही कर रहे थे, न्यायमूर्ति खेहर ही उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। मित्रों, अब आप यहां देखिए कि जो खेहर जो चीफ जस्टिस जो बने हैं, थोड़ी सी स्थिति देखिए कैसे बने हैं। आप अखबारों में पढ़ेंगे कि जो हमारे अभी जो सिटिंग चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा और इनकी नियुक्ति हो गई। क्यों हुई? इसलिए क्योंकि ये सीनियर मोस्ट थे। बस सीधी सी बात, सीनियर मोस्ट थे, यानी कि अब यहां योग्यता के सिद्धांत को नहीं रखा गया है कि एक कमेटी बैठेगी और कमेटी में के सामने तीन चार पांच नाम सुप्रीम कोर्ट के जो अभी सीटिंग जज हैं उनके नाम प्रपोज होंगे और फिर वो उनके सारे अभी तक की रिकॉर्ड को देख करके और उसमें से एक सेलेक्ट करेगी। नहीं, जो सीनियर मोस्ट है वह सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि जो अगर आप सीनियर मोस्ट को बनाते हैं तो उसमें फिर राजनीतिक हस्तक्षेप या भाई भतीजावाद ये सारी चीजें जीरो हो जाती हैं, खत्म सी हो जाती हैं। और अगर जो और दूसरी चीज ये भी इंपॉर्टेंट लगती है तो कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, जब उनको जस्टिस बनाया गया था तो उस समय भी देख करके बनाया गया था, वो सब योग्य लोग हैं, अपने अपने फील्ड के माहिर लोग हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर हम वरिष्ठता के सिद्धांत को लेकर के चलते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन मिल जाता है और जुडिशियल की जो इंडिपेंडेंसी है वो इंटैक्ट रह जाती है। आपको मैं केवल एक जानकारी के तौर पर बताना चाहूंगा कि मिसेस गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उस समय उन्होंने इस वरिष्ठता के सिद्धांत को तोड़ा था। उन्होंने शायद दो या तीन वरिष्ठतम जजों को सुपरसीड करके जो जूनियर जज थे उनको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया था और उनके विरोध में, फिर मिसेस गांधी के इस निर्णय के विरोध में जो सीनियर जो जजेस थे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। तो ऐसा भी होता है और स्वाभाविक है कि अगर सरकार किसी को फेवर करेगी, किसी जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए या चीफ जस्टिस ही बनाने के लिए, तो आगे चल करके फिर वो जज को भी कहीं ना कहीं सरकार से थोड़ा सा उसका वो तालमेल बैठने की वजह से एक दिमाग में संदेह तो आ ही जाता है। हालांकि कंपलसरी नहीं है कि वो सरकार का फेवर करेंगे ही, क्योंकि पद पर आ जाने के बाद एक अलग तरीके की भावना विचार दिमाग में होती है, लेकिन फिर भी इस बात से पूरी तरह से इनकार भी नहीं किया जा सकता। तो मित्रों, ये बात खासकर आपको जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के मुझे आपसे शेयर करनी थी, जो एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए। तो मित्रों, न्यूज से बस इतना ही, अब हम लोग न्यूज़पेपर पर आ जाते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, ये है टाइम्स ऑफ इंडिया का है। इसमें ब्रेग्जिट फिर दिया है इटलीव। मैं आपको बताना चाहूंगा, हिंदी पेपरों में ये नहीं आया है, न्यूज में भी अभी जो हम लोगों ने न्यूज सुनी उसमें नहीं है। अभी इटली में पिछले संडे को चुनाव हुए थे, उस चुनाव में असली में जो अभी वहां के अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इटली के, अभी जो रेंजी उनका नाम है, उन्होंने एक रेफरेंडम कराया था, पब्लिक ओपिनियन ली थी, क्योंकि वो संविधान में बदलाव लाना चाहते थे और संविधान में इस तरीके से बदलाव लाना चाहते थे कि जो ज्यादा शक्तियां हैं वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में आ जाएं और जो अपर हाउस है, संसद के वहां भी दो सदन है, तो अपर हाउस जैसे हमारे यहां राज्यसभा है, उनकी शक्तियों को कम कर दिया जाए। ये उनका आधार था, मतलब प्राइम मिनिस्टर और ज्यादा शक्तिशाली बन जाएं इटली के। तो ये इस पर रेफरेंडम कराया गया तो जनता ने उनके इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यू कह लीजिए कि इनडायरेक्टली कि प्राइम मिनिस्टर हार गए, अब वो त्याग पत्र देंगे। अब देखिए कि इसका क्या असर है मित्रों। इस बीच में ये देखा जा रहा है कि पूरे के पूरे यूरोप में जो राइट विंग है, जिसे हम दक्षिणपंथी कहते हैं, वाम दक्षिणपंथी कहते हैं, उनका प्रभुत्व लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब मैं दक्षिणपंथी और वामपंथी के बारे में यहां अगर बताऊंगा मित्रों तो समय खराब हो जाएगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को याद दिला सकता हूं कि आपको ध्यान होगा कि मैंने इसको बहुत विस्तार से आपको समझाया था कि राइट विंग क्या है, लेफ्ट विंग क्या है, क्यों ये नाम रखा गया है, वर्ल्ड में ये कैसे काम कर रहे हैं, फ्रीडम मूवमेंट में इनके किस तरह से लेफ्ट और राइट विंग का संघर्ष रहा है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, बस आप समझ लीजिए। राइट विंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फ्रांस में अगले साल चुनाव होने हैं, स्पेन में चुनाव होने हैं, नीदरलैंड में चुनाव होने हैं, और ये माना जा रहा है कि उन सब में धीरे धीरे राइट विंग की सरकार आएगी। और ये जो राइट विंग की सरकार है, मतलब जो दक्षिणपंथी सरकार है, ये यूरोपियन यूनियन में बने रहना पसंद नहीं करती, क्योंकि उन सभी के देशों में अब ये जो ग्लोबलाइजेशन है उसके कारण प्रॉब्लम होने लगी है दोस्तों। उनके अपने जॉब कम होने लगे हैं, प्रवासियों की समस्या होने लगी, दूसरे देशों से लोगों की संख्या बढ़ने लगी है, और जो इस्लामिक टेररिज्म है वो आप देख ही रहे हैं। तो अभी जो वर्तमान सरकारें हैं, जो लेफ्ट विंग की सरकारें हैं या कह लीजिए कि मॉडरेट सरकारें हैं, उनके प्रति लोगों का धीरे धीरे मोह भंग हो रहा है, तो एक नई सरकार को मौका देना चाहते हैं। ब्रेग्जिट में यही हुआ कि ब्रिटेन ने सोची कि जो सोच कल्पना भी नहीं की थी, यूरोपियन यूनियन छोड़ने का फैसला कर लिया। इटली में जैसे ही प्राइम मिनिस्टर त्याग पत्र देंगे, तो अब जिनके राइट विंग के प्राइम मिनिस्टर की जो पार्टी जो आएगी, वो पहले ही कह रही है कि हम यूनियन में नहीं रहना चाहते, यूरोपियन यूनियन में नहीं रहना चाहते। अब इटली होगा जो यूरोपियन यूनियन को छोड़ेगा, और इटली यूरोपियन यूनियन का एक बहुत ही हार्ट लैंड कहा जाता है, उसका मध्य देश यानी हृदय प्रदेश कहा जाता है। अगर इटली छोड़ता है तो आप ये समझ लीजिए कि यूरोपियन यूनियन के अंत होने की फिर से एक शुरुआत होगी। ब्रिटेन से तो शुरुआत हो गई है, एक बहुत बड़ा धक्का होगा। और अभी जो मैंने आपको फिनलैंड, आप सॉरी नीदरलैंड और फ्रांस और इनके जो नाम बताए हैं, अगर यहां भी आप राइट विंग की सरकारें आ गई तो ये भी यूरोपियन यूनियन छोड़ेंगे, तो पूरी की पूरी दुनिया में एक जबरदस्त बदलाव का माहौल बन सकता है। इसीलिए मित्रों इन्होंने लिखा है इटाली, यानी कि ब्रेग्जिट, ब्रिटेन एग्जिट कर गया यूरोपियन यूनियन से, तो इटली भी लीव कर रहा है, मतलब इटली भी अब यूरोपियन यूनियन को छोड़ रहा है। तो ये चूंकि न्यूज में भी नहीं थी और हम लोगों ने इसकी चर्चा भी नहीं की थी मित्रों, तो इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए ये थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताई है, ताकि आप इस आर्टिकल को, इस एडिटोरियल कमेंट को अच्छे से समझ सकें। तो मित्रों अब एक आर्टिकल जनसत्ता का है, एशिया में तनाव को लेकर के, ये अच्छा आर्टिकल है, आपको काफी डिटेल्स इसमें जानने को मिल जाएंगी। खासकर अभी जो हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन जो अमृतसर में हुआ है उसको बेस बना करके लिखा गया है, हिंदी में है, उसे आप लोग देख लीजिएगा, आपके आराम से समझ में आ जाएगा। तो मित्रों आज के इस न्यूज एनालिसिस में इतना ही, न्यूज पेपर से भी इतना ही। अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर। मित्रों आज के ईमेल की शुरुआत करता हूं मैं नीतू सिंह के ईमेल से, जो चंडीगढ़ से हैं, अभी पुलिस सर्विस में भी हैं और हमारी फोर्थ बैच की स्टूडेंट रही हैं। इनका एक ओपिनियन मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं उन्हीं के शब्दों में। उन्होंने लिखा है कि सर जी मैं अपनी बात को एक लाइन में ही कहना चाहूंगी कि इस साल के पेपर देखकर डेली ऑडियो के लिए हमारी श्रद्धा और गहरी हो गई है, और गहरी हो गई है। लगभग सभी क्वेश्चंस में लगता है कि सर ने इस पर भी बात की थी, उसे अमल में किसने कितना लिया वो स्टूडेंट के ऊपर है, पर पेपर देखकर डेली ऑडियो के सिविल सर्विस का रियल गाइड होने पर तो हम कम से कम कोई संदेह नहीं किया जा सकता, जैसा कि ऑडियो का नाम ही आपने रखा है। धन्यवाद। तो नीतू इस मेल के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैंने नीतू के इस मेल को इसलिए आप लोगों के सामने शब्दशः रखा है क्योंकि आप सब देखिए डेली ऑडियो सुनते हैं, अंततः सुनते ही हैं, और अगर आपको पसंद नहीं है तो सुनना बंद कर दिया होगा, तो वो नीतू के भी इस मैसेज को नहीं सुन पाएंगे। आप सुनते हैं, अपना समय देते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर सच में आप सुनते हैं और अपना समय देते हैं तो पूरे विश्वास के साथ सुनिए। उससे भी बड़ा शब्द है जिसे नीतू ने इस्तेमाल किया, श्रद्धा के साथ सुनिए, उससे उसका फायदा आपको ज्यादा मिल पाएगा। जब आपके इस ऑडियो पर विश्वास हो जाएगा तो डेफिनेटली आप इसके शब्दों पर भरोसा करेंगे, अमल में लाएंगे, और वही अमल में लाना आपको सिविल सर्वेंट बनाएगा। दोस्तों सिर्फ इस बात को ध्यान में रख करके मैंने नीतू कि इस मेल को शब्दशः आपको पढ़कर सुनाया है। हां, पूरी तरह से एनालिसिस करने के बाद बीच बीच में मैं अपनी बातें भी आपके सामने रखूंगा। और वैसे भी मित्रों, हाथ कंगन को आरसी क्या नीतू ने जो बातें लिखी हैं उन्हें आप या तो महसूस कर सकते हैं, नहीं तो सारी चीजें नेट पर अवेलेबल हैं। मेरे ऑडियो लेक्चर भी अवेलेबल हैं, वीकली क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं, प्रेस क्लिपिंग्स भी हैं, करंट कंटेंट भी हैं, सारी चीजें अवेलेबल हैं। आप खुद भी तो उसका जजमेंट कर सकते हैं। तो नीतू, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मित्रों, आप सभी को आभार देता हूं, धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ईमेल लिखे हैं। इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: वरुण पांडे इलाहाबाद से, आलोक कुमार, पूनम ठाकरे, सोनू अग्रवाल, मृदुल त्रिपाठी, अबू रैहन, सुरेश कुमार त्रिपाठी, प्रीति बंसोड़ दुर्ग छत्तीसगढ़ से, देवीलाल सूरतगढ़ राजस्थान से, सुनील कुमार ठाकुर कुल्लू हिमाचल प्रदेश से, पूनम सोनवानी रायपुर छत्तीसगढ़ से, विजेता सेन, अभिनव वर्मा, परवेश बिश्नोई सिरसा हरियाणा से, चंद्र अग्रवाल और अनंत कुमार, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।